राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन गज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन सारी। यमुना तीरा बन सारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुनाथ परमहंस परिव्राज कचारी अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस कॉन्फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधावर्थ सती ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय। श्री गो पूजा महामहोत्सव की जय। श्री दैत्यराज बलि महाराज पूजा महामहोत्सव की जय। श्री रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो आज चार उत्सव हैं। मुख्य गोवर्धन पूजा का महोत्सव है और गोवर्धन पूजा के साथ गो पूजा भी है। इसके अलावा रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव है और बलि दैत्यराज पूजा है। तो रसिकानंद प्रभु के बारे में मैं थोड़ी बातें सुना रहा हूँ समाधि पुस्तक से पढ़ करके। रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी प्रकट हुए थे एक राजा के पुत्र के रूप में और ये पूर्ण संत बने, गौड़ी वैष्णव विद्वान बने, रसिक भक्त बने और श्री श्यामानंद प्रभु के महाप्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु के आदेश से रसिकानंद हेड पुजारी बने और अपने गुरु के जो श्री विग्रह गोविंद जी थे उनकी सेवा करते रहे पूर्ण समर्पण के साथ। तो उनकी बहुत जो प्रेमयी सेवा थी इससे गोविंद जी का सौंदर्य और आनंद बढ़ गया। ऋषिक मुरारी भक्तों को प्रसन्न करते थे भगवान की शुद्ध सेवा के द्वारा और जब अच्छी प्रकार से स्थापना कर दी गोविंद जी की पूजा की तो फिर इन्होंने श्यामानंद के आदेश से प्रचार का कार्य स्वीकार किया। तो 40 साल तक उन्होंने व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित करते रहे। रसिकानंद ने उद्धार किया सबका, यहाँ तक कि जो बहुत पवित्र और धनाढ्य परिवार के लोग थे उनको भी और मुसलमानों को भी, और जो बहिष्कृत जातियाँ थीं और नास्तिक थे, और यहाँ तक कि जो जंगली पशु थे उनको भी, उनका भी उद्धार किया। तो एक बार एक पागल हाथी ने रसिकानंद के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ये विचलित नहीं हुए, उद्योग नहीं हुए, बल्कि शांतिपूर्वक स्थिरतापूर्वक उन्होंने कीर्तन किया, गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा, और उसके ऊपर जो है उन्होंने जल छिड़का। तो जैसे ही जल छिड़का उसके ऊपर, वो पागल हाथी था, आक्रमण की स्थिति में था, वो तुरंत ही वो उसने आक्रमण करना बंद कर दिया और विनम्रता पूर्वक अपने सिर को झुकाया, अपनी सूंड को ऊपर उठाया और बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन बोला? हाथी बोला। हाथी बोला। तो जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा उस समय इन्होंने बहुत ही तीव्र कीर्तन का आयोजन किया। तब उन्होंने संसार को छोड़ा, कैसे? क्षीर चोरा गोपीनाथ का जो विग्रह था रेमुणा में, उसमें प्रवेश करके रसिकानंद उड़ीसा में रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में उन्होंने कीर्तन कराया, और कीर्तन के बीच में ही उन्होंने क्या किया, श्री विग्रह में ही प्रवेश हो गए। तो विरह से बहुत कष्ट पाते हुए उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उसी समय मृदंग छोड़ दिए, करताल छोड़ दिए और अपने शरीर भी छोड़ दिए तुरंत ही। देखा उनके शिष्यों ने भी। तो इनकी पुष्प समाधि, ये सब अपने जो शुद्ध भक्त थे उनके साथ में इनकी पुष्प समाधि मिलती है उसी मंदिर के पास में। कौन सा मंदिर? क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर के पास में, क्योंकि इनकी समाधि तो है नहीं शरीर की, शरीर तो उनका भगवान में प्रविष्ट हो गया था। रसिकानंद प्रभु की जो पुष्प समाधि है ये श्यामानंद प्रभु की पुष्प श्यामानंद प्रभु की समाधि के निकट है, राधा श्याम सुंदर के मंदिर के पास में। शिला रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब बलि दत्तराज पूजा, आज के दिन बलि महाराज को वामन देव ने वरदान दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि आज प्रतिपद है, कल अमावस्या थी, अमावस्या के बाद प्रतिपद, शुक्ल पक्ष का पहला दिन कार्तिक का। तो इस दिन जो है बलि महाराज और विंध्यावलि जो उनकी पत्नी है उनकी पूजा होती है, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। तो यदि संभव हो तो बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए, जो दैत्यों के राजा हैं, और इनका चित्र बनाया जाए 5 रंगों में और बहुत प्रसन्नता पूर्वक इनके चित्र को दिखाया जाए कि प्रसन्न मुद्रा में हैं, उनके 2 हाथ हैं, पूर्ण रूप से आभूषणों से विभूषित हैं, और कानों में कुंडल और सिर में मुकुट है, और विंध्यावली के साथ में हैं, और इनके साथ में दैत्य भी खड़े हैं, कुष्मांड मय जम्भोरु और मुर। तो ये जो महात्मा जो बलि हैं इन्होंने अपना शरीर दिया था भगवान विष्णु को दान में, क्योंकि उन्होंने अपना वचन पूरा करना था, भगवान को वचन पूरा करना था, परंतु फिर भी भगवान ने उनको जो है बांधा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परंतु बुद्धिमान बलि जो है भगवान के द्वारा बांधे गए और उनको स्वतः लोक में भेजा गया और उनको बहुत तंग किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का अपमान नहीं किया और पूरी तरह से अपना अहंकार त्याग दिया था। तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए बलि के ऊपर और उन्होंने कहा कि हे दैत्यराज, तुमको जो है बहुत लोगों के पुण्य प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति दान देता है अब्राह्मण को, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है उसको दान देता है ना, तो उसके दान का जो फल है वो तुमको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। आप समझे, वामन भगवान ने बलि को वरदान दिया कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण नहीं है और कोई व्यक्ति इसको दान देता है तो उसके दान का जो फल है वो तुमको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति होम करता है बिना मंत्र के तो उसका भी जो फल है वो तुमको प्राप्त होगा, उसका पुण्य। और जो व्यक्ति जप करता है अशांत मन से तो उसके जप का भी फल आपको प्राप्त होगा। तो व्यक्ति को जो है दैत्यराज की पूजा करनी चाहिए प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ये जो दिन है इस दिन बलि महाराज को भगवान ने वरदान दिया था, तो इनकी जो पूजा है बड़े उत्साह के साथ करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण के समान जो है भक्ति भाव से करना चाहिए। श्री बलि दैत्यराज पूजा महामहोत्सव की, तो जो गोवर्धन पूजा का उत्सव है तो इसकी बहुत विस्तृत कथा श्रीमद् भागवत में भी है और गर्ग संहिता में भी बहुत विस्तृत कथा है। इसमें एक पूरा गिरिराज खंड है जिसमें कि 10 अध्याय हैं, तो जितना अधिक संभव हो हम इसमें से आपको पढ़ के सुना रहे हैं। राजा बहुलास्व ने प्रश्न किया नारद जी से कि हे देवर से, जैसे बालक खेल ही खेल में कुकुर मुत्ता उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया, ऐसी बात सुनी जाती है तो ये घटना कैसे हुई? हे मुनि सत्तम उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। कथम दधारे भगवान गिरिम गोवर्धनम परम उच्छलिंद्रम यथा बालो हस्तेन केन लीलयाम परिपूर्ण तमस्यासं श्रीकृष्णस्य महात्मनः वदे तच्चरितं दिव्यं अद्भुतं मुनि सत्तम। अब नारद जी बताते हैं कि प्रतिवर्ष वृंदावन के गोप इंद्र की पूजा करते थे, तो एक दिन भगवान कृष्ण गोप सभा में नंद जी से प्रश्न करते हैं, तो आज का ही दिन था, तैयारियां हो रही थी इंद्रयाग की, तो भगवान कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं सभा में, गोपों की सभा में। तो भगवान पूछते हैं ये जो इंद्र की पूजा की जाती है इसका क्या फल है? तो नंद जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का ये पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान बोले, पिताजी इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग का सुख भोगते हैं। तो भगवान का ये कहना है कि इंद्र फिर क्या आपको फल देंगे? यह जगह वे खुद ही अपने पुण्य का फल भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी गिरना पड़ता है, तो फिर इंद्र की पूजा से क्या लाभ? भगवान कहते हैं अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेश्वर ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है, फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है? तो उस परमेश्वर को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट अनंत और सब प्रकार से बलवान मानते हैं, इसलिए मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है, दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। भयम भवेद वै परमेष्ठिने यतो वातातुका कोकिल तत्कृतात्मनाम तस्मात् परम काल मनंतमेव हि सर्वं बलिष्ठं सुवृधा विदुः परे ततस्तमाश्रित्य सुकर्मभिः परम भजेद हरिं यज्ञपतिं सुरेश्वरम् विसृज्य सर्वं मनसा कृते फलम् व्रजेत् परम मोक्षमसो न चान्यथा। तो भगवान ने आज के दिन से जो है इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पूजा शुरू करवाई और तब से गोवर्धन की पूजा चल रही है। तो भगवान क्या कहते हैं, गौ ब्राह्मण साधु अग्नि देवता वेद और धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान को केंद्र बना करके पूजा की जा सकती है। किसकी? गौ ब्राह्मण साधु अग्नि देवता वेद, इन सब की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान को केंद्र बना करके करनी चाहिए। गोवि प्रसाद ध्वनि सुराश्रुति तथा धर्म से यज्ञाधिपते विभूत जिसने सुचैते सुहरिम भजंती ये सदा त्विहामुत्र सुखम रजंती ते। अब गोवर्धन के बारे में भगवान क्या कहते हैं, भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ यह गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त के प्रभाव से इस ब्रज मंडल में आया है। इसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। समथितो असौ हरि वक्षसो गिरिं गोवर्धनो नाम गिरिंद्र राजराट समागतो यत्र पुलस्त तेजसाम यद् दर्शनात् जन्म पुनर्न विद्यते। गवों ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही ये उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तैयारियां की हैं इनमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी सामग्री है पूजा की जो तैयार हुई है तो उसको करना क्या है, गिरिराज को अर्पित करो। ये यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। जो गोवर्धन पूजा है यज्ञ नहीं है, क्या है? यज्ञों का राजा है। यही मुझे प्रिय है। यदि आप ये काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसे इच्छा हो वैसा कीजिए। भगवान ने कहा अगर नहीं चाहते हो करना तो जैसी इच्छा है वैसा करो। इसे अर्जुन को कहा ये थे जसी तथा करो, तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। भगवान ने सब बता दिया। संपूज्य गो विप्रसुरान महान रहीम दातव्य मध्य विपरम व्यपायनम ऐसे प्रियो में मखराज एव ही नचेन्यथे छासी तथा कुरु ब्रज। श्री नारद जी कहते हैं हे राजन, उन गोपों में सन्नंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीति वेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। तो बाकी गोप तो विचार नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। सन्नंद जो है ना कृष्ण से कहते हैं, सनंद बोले हे नंद नंदन हे तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो, गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी ये ठीक ठीक बताओ। हे नंद सुनो हे तात, तुम साक्षात ज्ञान से सदी कर्तव्य के न विधिना पूजा द्रेर वद तत्वतः। तो फिर भगवान जो है बड़े विस्तार से गिरिराज की पूजा की विधि बताते हैं। तब वो क्या हुआ, नंद नंदन की ये बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि गोप बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग दिया। क्या पहले का निश्चय क्या त्याग दिया? इंद्र की पूजा त्याग दिया और गिरिराज पूजन का आयोजन किया। श्रुत्वा वचो नंद सुतस्य साक्षान् श्रीनंद सन्नंद वनं व्रजेशाम् सुविस्मिता पूर्वकृतं विहाय प्रचक्रिरे श्री गिरिराज पूजाम्। नंदराज अपने दोनों पुत्र कौन, बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्गाचार्य थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर बैठे हुए थे। कौन? नहीं, गर्गाचार्य। गर्गाचार्य को हाथी पर बैठाया गया था। और गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। नंद उपनंद और वृद्ध भानुगण अपने पुत्रों पौत्रों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा सामान लिए गिरिराज के पास पहुंचे। हजारों सूर्यों की दीप्ति से प्रकाशित शिबिका में आरूढ़ हो कौन? राधा रानी। शिबिका मतलब पालकी, पालकी में आरूढ़ हो, दिव्य वस्त्रों और रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखियों के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे सची शोभा पाती हूं। और राधा रानी के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत दो सर्वश्रेष्ठ सखियां हैं कौन? ललिता और विशाखा, चमन डोलाती हुई शोभा पा रही थी। तो समय सब प्रकार के गोपियों के दल आए वहां, और ये कोई थोड़ा छोटा उत्सव नहीं था, बहुत बड़ा उत्सव था ये। बालक युवक और वृद्ध गोप भी वहां पर इकट्ठे हुए, पीतांबर पहने, पगड़ी पहने, मोर पंखों से मंडित और सुंदर हार गुंजा और बनमालाओं से विभूषित होकर के नवीन छड़ी लिए बेणु लिए वहां आकर इकट्ठे हुए। गोपांश वृद्धा शिशवो युवान पीताम्बरो स्नेत बरह मंडिता श्रीहार गुंजावन मालिका भी रेजो समेत नवयस्ती वेणु भी। अच्छा, अब शिवजी ने भी समाचार सुना। शिवजी ने समाचार सुना किससे? हिमालय के मुख से, पर्वतों के राजा हिमालय के मुख से शिवजी ने समाचार सुना। तो जटाजूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला और कंगनों से विभूषित हो भांग धतूरा और विष पीकर कौन आए? शिवजी आए। गिरिराज नंदिनी उमा के साथ नंदीश्वर पर आरूढ़ हो और प्रमथ गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए। फिर मुख्य मुख्य राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर और हजारों ब्राह्मण गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। राजर्षि विप्रर्षि ईश्वरर्षि सिद्धेश योगेश्वर हंस मुख्या आज मुरादंगी दर्शनार्थम सहस्र सो विप्रगण समेत। अब गोवर्धन का भी अब रूप देखो कैसा हो गया। अब गोवर्धन का रूप वैसा नहीं है जैसा था, बल्कि अलग रूप हो गया। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला क्या हो गई? रत्नमयी हो गई। उसके सोने के श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। वह पर्वत मतवाले भ्रमरों और कंदराओं से शोभा धारण करने लगा। उस समय सब पर्वत आए गिरिराज की पूजा करने के लिए। जितने पर्वत हैं हिमालय और सुमेरु पर्वत, ये भी आए दिव्य रूप धारण करके, भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों और गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन और बहुमूल्य भेंटें प्रस्तुत की। नंद, उपनंद, गृषभानु और गोपियां और गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। नंदोपनंद गृषभानु भिष्चां गोपी गणे गोप गणे प्रार्थिता गायधिरा नर्तन वादे तत्परे चकारे कृष्णोद्रीवरे प्रदक्षिणा। तब आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जो जन समुदाय है वो खील की वर्षा करने लगे। उस यज्ञ में गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगे। साक्षात श्री कृष्ण भी शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और क्या कह रहे हैं, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं। यूं कहते हुए वहां का सारा अन्नकूट भोग खाने लगे। कृष्णोपि साक्षात् ब्रज शैल मध्यां धृत्वात् दीर्घं किलचाण्य रूपं शैलोऽस्मि लोकानिति भासयन्तं जघास सर्वं कृतं मन्नकूटम्। भगवान ने जब इतना विशाल रूप पर्वत से प्रकट किया तो बता भी रहे हैं कि मैं गिरिराज हूं, जिससे किसी को कोई डर ना पैदा हो। तो भगवान बोलते जाते हैं जैसे कोई डरे नहीं, और भगवान खाना शुरू करते हैं। उस समय गोपों ने कहा, बहुत उत्साह हुआ जब गिरिराज का दर्शन किया और खा रहे हैं, तो गोपों को बड़ा उत्साह हुआ। वे बोले, हे प्रभु, आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। गोप कहते हैं, आज स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से क्या हो, हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन बढ़ता रहे। आशीर्वाद मांग रहे हैं गोवर्धन से। तो गोवर्धन के रूप में भगवान क्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। और किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर्धान हो गए। नो गोधनम वाकेले बंधुवर्यो वृद्धिम समाया तु दिने दिने को तथास्तु चोक्त्वा गिरिराज राजो गोवर्धनो दिव्य पपुरुदधानः। तब नंद उपनंद वृषभानु बलराम वृषभानुवर सुचंद्र श्री नंदराज श्री हरि एवं समस्त गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को गए। श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का और गिरिराज के इस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। ये पवित्र प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है। श्री कृष्णचंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। नारद जी कहते हैं कि फिर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप सुन करके इंद्र, नारद जी कहते हैं मैंने इंद्र को सूचना दी मैंने इंद्र को सूचना दी क्या कि तुम्हारा यज्ञ अब लुप्त तो हो गया है। और गोवर्धन पूजन उत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सामर्थक नामक मेघों को जिनका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। अथ मनमुग्धा श्रुत्वा स्वात्मयागस्य नाशनम गोवर्धनोत्सवम जातम कोपम चक्रे पुरंदरः। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। ये बड़ा अद्भुत जो है वर्णन है। ये मेघ जो है ना कैसे हैं, विचित्र वर्ण के हैं, विचित्र वर्ण के हैं, और रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चल पड़े। कैसे कैसे हैं मेघ हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं और कोई हरे हैं। कभी देखा ऐसे मेघों को, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई हरे हैं, और कोई वीर बहुटी के समान लाल हैं, और कोई कपूर के समान सफेद हैं, और कुछ नीले कमल के समान मेघ हैं। और ये कैसी वर्षा कर रहे हैं, हाथी की सोड़ के समान मोटी धारा की वर्षा करने लगे। कैसी वर्षा है, हाथी की सूर के समान मोटी वर्षा करने लगे। और कुछ मेघ जो है ना वर्षा करते हैं हाथी के समान बूंदे, हाथी के समान बूंदे, बूंद, कुछ मेघ बूंदों की वर्षा करते हैं तो बूंद भी कैसी है? हाथी के समान है। हाथी के समान इतनी बड़ी बड़ी बूंद, सोचो है? सोच सकते हो कभी? और जो धारा गिराते हैं तो वो धारा भी कैसी है? हाथी की सूंड के समान है। हस्ति तुल्यान वारी बिंदुन वब्रसुस्ते मदोन्धताम हस्ति सुंडा समाभिश्चाम धाराभिश्चंचलाशये। अब क्या हुआ? पर्वत शिखर के समान करोड़ों ओले वहां बड़े वेग से गिरने लगे। ओले गिर रहे हैं कितने बड़े बड़े? पर्वत के शिखर के समान इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोगों को नींद आ रही है, ब्रज के ऊपर इतना संकट है और कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं। क्या संकट है ब्रज के ऊपर? धारा हो रही है, धारा बरस रही है हाथी की सूंड के समान, और बूंदें गिर रही हैं हाथी के समान, और ओले गिर रहे हैं कैसे? पर्वत शिला के समान इतने बड़े बड़े ओले, और कुछ भक्तों को सुखपूर्वक नींद आ रही है। सो रहे हैं, बहुत सुखपूर्वक सो रहे हैं। और आंधी कैसी चल रही है? वृक्षों और घड़ों को उखाड़ रही है आंधी। प्रियकारी मेघों और वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर शब्द से सातों लोक और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। कितना खतरा है। आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे हैं, फिर भी हमारे कुछ भक्तों को नींद आ रही है। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंबों को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासियों ने प्रणाम करके कहने लगे। भयभीता गोप मुख्या सकुटुंबाज की सवाम सुसून स्वान स्वान पुरस्कृत नंद मंदिर मायजु श्री नंद नंदनम नत्वा सबलम परमेश्वरम ओचुर ब्रजो गथा सर्वे भयार्ता शरणम गतम। तो गोप बोले, हे महाबाहु राम, हे राम और हे ब्रजेश्वर कृष्ण, हे कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम रामे महाबाहो